भागवत सार की श्रृंखला में आठवें स्कंद के 16वें अध्याय पर चर्चा है। इसके श्लोक को दोहराइए। उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं। उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं। उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं। उपतिष्ठस्व पूजने का प्रयास करो। पुरुषम परम पुरुष को, भगवंतम भगवान को, जनार्दनम समस्त शत्रुओं का वध कर सकने वाले को, सर्वभूत गुहावासम हर एक के हृदय में वास करने वाले, वासुदेवं वसुदेव के पुत्र सर्वव्यापी वासुदेव कृष्ण को, जगद्गुरुं सारे संसार के गुरु तथा शिक्षक को। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे अदिति, तुम उन भगवान की भक्ति में लगो जो हर एक के स्वामी हैं, जो हर एक के शत्रुओं का दमन करने वाले हैं तथा जो हर एक के हृदय में, हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। वे ही परम पुरुष श्री कृष्ण अथवा वासुदेव सबको शुभ वरदान दे सकते हैं, क्योंकि वे विश्व के स्वामी हैं। तात्पर्य, कश्यप मुनि ने इन शब्दों के द्वारा अपनी पत्नी को शांत करना चाहा। अदिति ने अपने भौतिकवादी पति से याचना की थी, निसंदेह यह अति उत्तम है, लेकिन वास्तव में किसी का भौतिकवादी रिश्तेदार उसकी कोई भलाई नहीं कर सकता। यदि कोई भलाई की जा सकती है तो वह भगवान वासुदेव द्वारा ही की जाती है। अतएव कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति को उपदेश दिया कि वे भगवान वासुदेव की पूजा करने शुरू कर दे, जो हरेक के हृदय के भीतर आसीन हैं। वे सबके मित्र हैं और जनार्दन कहे जाते हैं, क्योंकि वे सारे शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, सतो, रजो तथा तमो, और प्रकृति के भी ऊपर दूसरा जगत है जो शुद्ध सत्व कहलाता है। भौतिक जगत में सतोगुण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु भौतिक कलमश के कारण कभी कभी सतोगुण भी रजो तथा तमो गुणों से पराजित हो जाता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इन गुणों की स्पर्धा को पार करके अपने को भक्ति में लगाता है तो वह प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। उस दिव्य अवस्था में वह शुद्ध चेतना को प्राप्त होता है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शक्तितम, भौतिक प्रकृति के ऊपर वह पद है जो वसुदेव कहलाता है, अर्थात भौतिक कलमश से मुक्ति। केवल इसी पद पर मनुष्य को भगवान वासुदेव की अनुभूति हो सकती है। इस प्रकार वसुदेव पद आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ, जब मनुष्य को वासुदेव अर्थात भगवान की अनुभूति हो जाती है तो वह अत्यंत महान बन जाता है। जैसा कि भगवद्गीता में पुष्टि हुई है, परमात्मा हर एक के हृदय में स्थित हैं। भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। जो लोग निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं वह बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकें। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन, भगवान हरेक के हृदय में स्थित हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ऋषिगण मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी तथा शुभ चिंतक जानकर भौतिक क्लेशों के चंगुल से शांति प्राप्त करते हैं। जब कभी कोई परेशान हो तो उसे वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वे भक्त को इन सारी कठिनाइयों को पार करने तथा भगवत धाम जाने की बुद्धि प्रदान करेंगे। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की सलाह दी, जिससे उनकी सारी समस्याएं सरलता से हल हो जाएं। इस प्रकार कश्यप मुनि एक आदर्श गुरु थे। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि वे अपने आप को ईश्वर के समकक्ष एक महापुरुष के रूप में प्रस्तुत करते। वस्तुतः वे प्रमाणिक गुरु थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की सलाह दी। जो व्यक्ति अपने अधीनस्थ या शिष्य को वासुदेव की पूजा करने का उपदेश देता है, वह सचमुच प्रमाणिक गुरु है। इस प्रसंग में जगत गुरुम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कश्यप मुनि ने झूठे ही अपने को जगत गुरु घोषित नहीं किया, यद्यपि वे वास्तव में जगत गुरु थे, क्योंकि उन्होंने वासुदेव के पक्ष का समर्थन किया। वस्तुतः वासुदेव ही जगत गुरु हैं, जैसा कि यहाँ स्पष्ट कहा गया है, वासुदेवम जगत गुरु। जो वासुदेव के उपदेशों की अर्थात भगवद्गीता की शिक्षा देते हैं, वह वासुदेवम जगत गुरु जैसा ही होता है। किंतु जब कोई इस उपदेश की यथारूप शिक्षा नहीं देता, किंतु अपने आप को जगत गुरु घोषित करता है, तो वह जनता को मात्र ठगता है। कृष्ण ही जगत गुरु हैं, और कृष्ण की ओर से यथारूप में कृष्ण के उपदेश की शिक्षा देता है, उसे जगत गुरु माना जा सकता है। जो अपने सिद्धांत स्वयं गढ़ता है, उसे जगत गुरु नहीं माना जा सकता, वह झूठे ही जगत गुरु बन बैठता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कृते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुरा। हरे कृष्णा। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे देवताओं के परास्त हुए के बाद फिर आगे वर्णन करने लगे सुखदेव गोस्वामी, और फिर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि ये विरोधाभास बातें आप बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वर्णन किया कि बलि महाराज अगले मन्वंतर में वो इंद्र बनेंगे, और बलि महाराज इंद्र इसलिए बनेंगे क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को समर्पण किया, भगवान ने उनसे भिक्षा मांगी और फिर भगवान ने उन्हें बंदी बना लिया। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न ये था कि ये कैसी विरोधाभास बातें हैं। सबसे पहली बात कि भगवान तो सभी चीज़ों के स्वामी हैं, उन्हें भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है, और दूसरी बात कि जब बलि महाराज ने अपना सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया तो उन्होंने उन्हें बंदी क्यों बनाया। तो इसके उत्तर में उन्होंने समझाया कि कैसे बलि महाराज ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। बलि महाराज बहुत शक्तिशाली थे क्योंकि उन्होंने गुरु की सेवा की थी, और गुरु की शक्ति से अब वो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि भगवान के अलावा कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। तो अब आगे के इस अध्याय में पयोव्रत विधि का वर्णन कश्यप मुनि करते हैं। तो ये अध्याय में पहले 10 श्लोक कश्यप और अदिति के संवाद हैं, अर्थात अदिति शोक करती हैं, कश्यप मुनि आते हैं और देखते हैं कि बहुत स्थिति ठीक नहीं है, शोक फैला हुआ है, तो वो प्रश्न करते हैं। उसके बाद अदिति उत्तर देती हैं और फिर पूरे अध्याय में प्रायः अंत तक कश्यप मुनि पयोव्रत कैसे करना है इसका वर्णन करते, कौन सी प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण करनी है, क्या नियम है। तो ऐसे ये अध्याय है। तो अदिति जो देवताओं की माता हैं, कश्यप मुनि के ही पत्नी हैं दीति और अदिति। तो दीति दैत्यों की माता हैं और अदिति आदित्यों की या देवताओं की माता हैं। जब हम लोग मोहिनी अवतार का वर्णन सुन रहे थे तो असुरों ने भगवान से, भगवान के मोहिनी रूप से ये कहा था कि हालांकि हम लोग भाई हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर युद्ध हो रहा है। तो भाई इसलिए हैं क्योंकि दोनों के पिता एक ही हैं, माताएं अलग अलग हैं, अदिति और दीति। तो जब देवताओं को छुपना पड़ा, अपने गुरु उसके पास गए बृहस्पति के पास, बृहस्पति ने कहा छुप जाओ, अभी तुम्हारी शक्ति काम नहीं करेगी, चले जाओ। तो उनकी जो माता थी अदिति, स्वाभाविक है बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि देवताओं का सारा ऐश्वर्य चला गया, उनकी संपत्ति चली गई, कुछ रहा नहीं, वेश बदल कर कहीं उनको छुपना पड़ा ताकि कोई पहचान नहीं ले। तो स्वाभाविक है कि उनकी माता तो प्रसन्न नहीं होंगी। तो अदिति बहुत दुखी हो गई, शोक करने लगी। और ये वो समय था जब कश्यप मुनि तपस्या कर रहे थे, ध्यान में थे, तपस्या में थे, काफी समय वो कहीं और दूर थे। तो बहुत समय बाद जब वो आए तो उन्होंने देखा कि उनके आश्रम में कोई रौनक नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है, बड़ा बड़ा मातम, शोक का वातावरण है। तो वो समझ गए कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है या बहुत बड़ी आपदा आई है, क्योंकि वो आश्रम में अदिति रह रही थी। तो अदिति दुखी थी। कभी कभी चिन्हों से स्थिति को जाना जाता है। हाँ, कई बार लोग इसको अंधविश्वास तक ले जाते हैं, तो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन चिन्हों से, लक्षणों से स्थान के महत्व को या समय काल के महत्व को समझा जाता है। जैसे जब रामायण में वर्णन है कि भरत वापस आए, भरत को कुछ पता नहीं था कि रामचंद्र जी का वनवास हो गया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, कुछ पता नहीं था। तो जब आए तो उन्होंने देखा कि पूरी नगरी बहुत दुखी है, कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा, घरों में दिए नहीं जलाए जा रहे, लोग इतना भी दुखी थे कि किसी के घर में भोजन नहीं पक रहा है। तो ये देखते हुए लक्षणों को आ रहे थे, महल में प्रवेश किया तो किसी ने बहुत उत्साह से स्वागत नहीं किया, लोग भी बड़े दुखी। तो उनको देखकर भरत को पता चला कि कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई। तो इसलिए लक्षणों से स्थान को पहचाना जाता है या काल को पहचाना जाता है, और आचरण से व्यक्ति को पहचाना जाता है। व्यक्ति की पहचान आचरण से होती है, स्थान की पहचान या काल की पहचान लक्षणों से होती है। जैसे जब विवाह हुआ था रामचंद्र जी का और वे लोग सब जा रहे थे, दशरथ महाराज इत्यादि, अयोध्या की ओर, तो अचानक कुछ बुरे लक्षण, अशुभ लक्षण दशरथ महाराज को दिखे। जैसे जो हिरण था वो उनको अपनी दाई ओर रखकर भाग रहा था, ऐसे कुछ अशुभ लक्षण दिखाई दिए, जिसको देखकर दशरथ महाराज ने कहा कि कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। और फिर अचानक परशुराम जी आए थे। तो ये जो लक्षण हैं, जो शास्त्र के अनुसार लक्षण हैं, वे आने वाले काल के प्रभाव को या काल या स्थान की सूचना देते हैं। हाँ, मनगढ़ंत ढंग से किए हुए लक्षण वो केवल अंधविश्वास है। जैसे बहुत लोग करते हैं, कहीं जा रहे हैं तो ये हो गया तो नहीं होगा काम, ऐसा हो गया तो नहीं हो, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए हमें। लेकिन फिर भी जो शास्त्र के अनुसार कुछ लक्षण हैं उनके अनुसार स्थान को जान लेना चाहिए। और व्यक्ति की पहचान आचरण से होती है, आचरण कैसा है उसका, व्यक्ति का चरित्र उसके आचरण से जाना जाता है। विशेष करके जब वो अकेले में आचरण करता है, सबके सामने नहीं, उससे उसका चरित्र जाना जाता है। तो यहां पर कश्यप मुनि उन्होंने लक्षणों को देखा, तो फिर उन्होंने आकर अपनी पत्नी अदिति से, जब वो आए, अदिति ने स्वागत किया, उनको बिठाया इत्यादि, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद आए थे। तो उन्होंने प्रश्न किया अदिति से कि क्या हुआ है, ये सब ऐसे वातावरण देखकर क्या ऐसा हुआ कि तुमने कभी किसी अतिथि का स्वागत नहीं किया, ये सब अशुभ लक्षण क्यों मैं देख रहा हूं, ये अशुभ क्यों है, क्या अशुभ हो गया तुमसे, क्या ऐसा हुआ कि कभी कोई अतिथि घर पर आया और तुमने उसका स्वागत नहीं किया। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि जिस घर में अतिथि आए और उनको जल भी अगर अर्पण ना किया जाए, उनका अपमान कर दिया जाए इस तरह, तो फिर वो जो घर है वो जंगल में बने हुए एक गड्ढे के समान है जिसमें सियार रहते हैं। तो इसीलिए ऐसा तो नहीं किया तुमने कि कहीं कोई अतिथि आए और तुमने स्वागत नहीं किया, या फिर ऐसा हुआ कि तुमने मेरे विरह में कि मैं नहीं हूं, तुमने यज्ञ इत्यादि करना, यज्ञ में घी की अग्नि डालना बंद कर दिया, घी की आहुति, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एक गृहस्थ के लिए अनिवार्य है कि वो यज्ञ करते रहें। या फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारे पुत्रों के ऊपर कोई संकट आया है। तो सब तरह से कश्यप मुनि पूछ रहे हैं कि क्या बात है, इतनी दुखी क्यों हो। वैसे इस बात से ये पता चलता है कि उस समय में ऋषि मुनियों के जो पत्नियां या परिवार होते थे वो केवल कष्ट आने पर दुखी होते थे। आजकल तो वो लोग वैसे ही दुखी रहते हैं, शक्ल से ही पता चलता है कि दुखी है, लेकिन पहले केवल ऐसे बहुत बड़ी विपदा आने से दुख प्रकट होता था। तो अदिति से उन्होंने ये सब पूछ लिया, तो अदिति ने कहा, अदिति ने उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी अतिथि का स्वागत नहीं किया हो, धर्म के सिद्धांतों को तोड़ा हो, क्योंकि मैं सदैव आपका स्मरण करती हूं, इसीलिए मैं धर्म के सिद्धांत तोड़ नहीं सकती। एक महत्वपूर्ण बात है, अगर हम सदैव अपने गुरु या आचार्यों का या भगवान का स्मरण करते रहें तो हम कभी किसी नियम को धर्म के तोड़ेंगे नहीं। हम धर्म के नियम इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि हमारा स्मरण इंद्रिय तृप्ति की ओर चला जाता है, हमारा स्मरण पाप की ओर चला जाता है। अगर हमारा स्मरण सदैव आचार्यों के, भगवान के में लगा रहे तो हम कभी भी धर्म के सिद्धांतों को तोड़ेंगे नहीं। अदिति यही कहती हैं कि क्योंकि मैं आपका हमेशा स्मरण करती रहती हूँ। अदिति के लिए कश्यप मुनि गुरु हैं, क्योंकि अब उपदेश भी आगे देने वाले हैं। तो इसीलिए अगर हम भी अदिति के स्थान पर अपने को रखकर एक शिष्य सदैव एक अपने गुरु का स्मरण करता रहे, भगवान का स्मरण करता रहे, तो उसके मन में पाप नहीं आएगा, वो सिद्धांतों को नहीं तोड़ेगा। इसलिए धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए अनिवार्य है कि हम गुरु का स्मरण और गुरु कृष्ण का स्मरण करते रहें। तो अदिति ने कहा कि बिल्कुल नहीं, कोई धर्म के सिद्धांत नहीं टूटे हैं, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप तो सबके लिए समान हैं। अब अदिति ये कहने चाह रही थी कि आप मेरे पुत्रों और दीति के पुत्रों दोनों के लिए समान हैं। ये क्यों कहा अदिति ने, क्योंकि अदिति को थोड़ा सा भय था कि अगर मैं कहूंगी कि मेरे पुत्रों के लिए कुछ कीजिए, उनकी दशा ठीक नहीं है, और आप दीति के पुत्रों को दंड दीजिए, तो शायद कश्यप मुनि कहेंगे कि नहीं, वो भी मेरे ही पुत्र हैं। तो दीति हो या अदिति हो, उनके लिए तो दोनों पुत्र समान है, दोनों के पुत्र समान हैं, तो दंड नहीं देंगे। तो वो अदिति यही कह रही कि क्योंकि आप समान हैं, याद दिला रही कि हाँ आप समान हैं, लेकिन समान रहकर जो अन्याय हुआ है उसको आपको बदलना चाहिए। तो दीति ने कहा कि, अदिति ने कहा कि आप तो समान हैं सबके लिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि हमारा जितना भी ऐश्वर्य है, मेरा और मेरे पुत्रों का, स्वाभाविक है पुत्रों का ऐश्वर्य चला जाएगा तो माता के लिए भी ऐश्वर्य चला जाएगा, तो जितना भी ऐश्वर्य है, संपत्ति है, सुख है, वो चला गया है, छीन लिया गया है। दैत्य जो स्वाभाविकतः शत्रु हैं, उन्होंने आक्रमण करके छीन लिया है, तो आप कृपा करके कुछ ऐसा बताइए जिससे पुनः वे लोग सुखी हो सके मेरे पुत्र। तो जब कश्यप मुनि ने यह सुना तो वो सोच रहे थे कि कुछ बहुत हुआ होगा, कोई बहुत बड़ी बात, इससे कोई अपराध हो गया इत्यादि। लेकिन जब सुना कि अपने लिए नहीं अपने पुत्रों के लिए दुखी है, तो कश्यप मुनि कहते हैं कि हाय, कितनी आसक्ति है इस जगत में व्यक्ति को संतान के प्रति। कश्यप मुनि को कोई चिंता नहीं है, चाहे दैत्य जीते या देवता जीते, कश्यप मुनि को कोई चिंता नहीं, दोनों उनके पुत्र हैं, किसी से आसक्ति नहीं। लेकिन अदिति क्योंकि मां है, तो कश्यप मुनि समझाने लगे कि कैसे, कितना बड़ा बंधन है आसक्ति का इस जगत में संतान के प्रति, और ये स्वाभाविक है। संतान के प्रति बंधन जीवन के अंत तक रहता है। देखिए कितनी विचित्र बात है, एक व्यक्ति जो विवाहित नहीं है वो विवाह करता है, ठीक है, पत्नी से आसक्त हो जाता है, फिर संतान होती है। अब ये वो संतान है जो मान लीजिए 20-25 वर्ष तक वो जानता भी नहीं था कि कौन है ये, लेकिन वो संतान होती है तो बचपन से, जैसे जिस दिन से संतान होती है उस दिन से उसकी आसक्ति, दिन संतान होती है जन्म ही नहीं गर्भ में आता है तब से उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। बड़ा ध्यान रखना, कुछ ये नहीं करना वो नहीं करना, उसके बाद संतान जन्म लेती है तो बहुत उसको, बच्चे को खिलाना, बच्चा बड़ा होता है उसको देखकर इतनी आसक्ति बढ़ती है, उसकी उसके खेल को देखकर वो कैसे कैसे बड़ा हो रहा है, बढ़ती जाती है आसक्ति। वैसे ये सुनने के बाद भी लोगों को बढ़ने वाली है आसक्ति, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ने वाली। तो देखते हैं बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फिर वो और बड़ा हो जाता है, युवक हो जाता है, और आनंद आता है, पढ़ाई करता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है, और आसक्ति बढ़ जाती है मेरा पुत्र। फिर कहीं उसको नौकरी लग जाती है, फिर उसके विवाह करते हैं, विवाह हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन उससे आसक्ति नहीं जाती। कभी कभी तो वो पुत्र छोड़कर चला जाता है झगड़ा करके, फिर भी आसक्ति नहीं जाती, है तो मेरा ही पुत्र। कभी कभी वो बड़ी निंदा कर देता है, अपमान कर देता है माता पिता का, लेकिन माता पिता की आसक्ति नहीं। मरते मरते भी व्यक्ति मर रहा होता है और उससे अगर पूछा जाए तो क्या चाहिए, तो बस मेरा पुत्र सुखी रहे। हमें ध्यान है कि बेलगाम मंदिर में एक ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी हैं अभी भी वो, तो उनके पिता की मृत्यु हो रही थी, पिता अंतिम सांसों में थे, तो हम लोग सब गए थे उनके घर पर, कीर्तन वगैरह हो रहा था पिताजी बस, तो हमने उनसे पूछा था, तो बस ऐसे थे कि बोलने नहीं हो रहा था ठीक से, डॉक्टर ने कह दिया था 1-2 दिन का समय है, कभी भी जा सकते हैं। तो हम लोगों ने कीर्तन किया, उसके बाद हम जा रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ी बात करें, तो हमने उनसे कहा कि आप भगवान का नाम लीजिए, तो ऐसे ऐसे कर रहे थे वो, तो हमने कहा कोई चिंता मत कीजिए, अभी सब कुछ छोड़ दीजिए, सब हो गया, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। तो वो कुछ कहने लगे, तो समझ नहीं आ रहा था जो बोल रहे हैं, तो उनके घर वालों ने पास में सुना क्या कह रहे हैं, तो कह रहे थे कि बस बेटे की शादी नहीं हुई ये दुख है। मतलब जो ब्रह्मचारी बन गया उसके लिए वो कह रहे थे कि उसकी शादी नहीं हुई वो दुख है। तो देखिए मर रहे हैं, मृत्यु है, मालूम है उनको भी, यानी ऐसा नहीं था उनको नहीं, उनको मालूम था कि बस जाने वाले हैं, कभी भी मर सकते हैं। तो उस समय भी दुख यही है कि लड़के की शादी नहीं हुई, क्या लड़के की शादी देख लेता तो अच्छा हो जाता। ये आसक्ति है, तो संतान से इतनी आसक्ति। सोचिए व्यक्ति जब मर रहा है उसको तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मालूम है मरने वाला है, बच ही नहीं सकता, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जाने तो वाला ही है, एक दिन बाद तो जाना ही है, फिर जैसे पुत्र जैसा रहेगा, पत्नी जैसी रहेगी, रहना है उसको, क्या कर सकता है। लेकिन उस समय भी आसक्ति नहीं छूटती, बस यही कि किसी तरह संतान सुखी हो जाए। हम मन में सोच रहे थे, उनको कहा तो नहीं हमने, लेकिन हमारे मन में आया कि अभी इस समय अपने सुख की चिंता कीजिए, अब आप ये चिंता कीजिए कि आप कहाँ जाएंगे, आपकी क्या गति होगी, पुत्र का तो जो होना है वो होगा, छोड़ दीजिए उसको, अपनी गति की सोचिए। तो कश्यप मुनि कहने लगे कि कितने बहुत कड़ा बंधन है ये पुत्र के प्रति। अब फिर वो कहने लगे कि किस लिए, किस शरीर के लिए, शरीर क्या है, भौतिक तत्वों से बना हुआ है, आत्मा उससे अलग है, फिर भी हम लोग आसक्त शरीर के लिए रहते हैं। तो देखिए ये गुरु का काम है, गुरु का कार्य क्या, ये जो हम लोग कथाएं सुनते हैं तो इसको केवल अदिति और कश्यप की कथा नहीं मान लेना चाहिए। अब अदिति एक शिष्य की तरह है और कश्यप गुरु है, तो शिष्य अब गुरु के पास आया है दुखी अवस्था में, तो पहला कार्य क्या है गुरु का, ज्ञान देना। अर्जुन श्री कृष्ण के पास दुखी अवस्था में आए थे, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वम प्रपन्नम, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे बताइए क्या करना। तो सबसे पहली चीज भगवान ने क्या की, ज्ञान दिया। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, अरे तुम ये शरीर की चिंता क्यों कर रहे हो, तुम शरीर हो ही नहीं, तुम आत्मा हो, और तुम ही नहीं, ये सारे लोग जिनको तुम सोच रहे हो मरने वाले हैं, ये भी नहीं मरने वाले। तो पहला ज्ञान दिया। तो यहां भी हम लोग देखते हैं कि अदिति को पहले ज्ञान दिया कि शरीर क्या है, पांच तत्वों से बना हुआ, भौतिक तत्वों से बना हुआ है, और उसमें आत्मा फंसी हुई है। फिर क्यों इस शरीर के प्रति इतनी आसक्ति, क्यों इस शरीर के प्रति सारा जीवन दे देना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम लोग कई बार सुनते हैं, जीवन भर सुनते रहते हैं, फिर भी शरीर के प्रति आसक्ति नहीं जाती। ऐसा लगता है कि ठीक है वो तो भागवत में कहा गया, वो तो भगवत गीता में कहा गया, मुझे तो अपना शरीर का ध्यान रख, ध्यान रखना जरूरी है लेकिन बहुत आसक्त होना जरूरी नहीं है। विशेषतः शरीर के प्रति अगर हम बचपन से या युवा अवस्था से अनासक्ति उत्पन्न नहीं करते हैं तो वृद्धावस्था में शरीर के प्रति आसक्ति बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सारा ध्यान शरीर पे होता है, इतनी बीमारियां होती हैं वृद्धावस्था में शरीर में कि सारा ध्यान शरीर पे होता है। आदमी सुबह से उठकर रात तक अपना ज्यादा से ज्यादा समय शरीर के लिए बिताता है, ये दवाई खानी है, ये नहीं खाना है, ये कार्य करना है, वो करना है, सारा शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि इतनी बीमारियां आ चुकी हैं। इसीलिए युवा अवस्था से हमें ये अभ्यास करना चाहिए कि कैसे शरीर की चेतना से बाहर रहे, ताकि वृद्धावस्था में जब शरीर कष्ट दे, शरीर में बीमारियां हो, बैठ जाए तो उठा नहीं जाए, उठ जाए तो चला नहीं जाए, जब ऐसी अवस्था हो तो बहुत ज्यादा स्मरण शरीर का ना हो, कृष्ण का स्मरण हो सके। तो इस वो कहते हैं कि ये क्या शरीर है जिसके प्रति आप इतने आसक्त हो। और फिर कश्यप मुनि उनसे कहते हैं कि फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति में लगो, क्योंकि वही एक है जो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। जैसे श्लोक में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये केवल भगवान ही सब कुछ आपको प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, उससे सब कुछ प्राप्त होगा। तो जब ये दूसरी बात देखिए, पहले ज्ञान दिया तो गुरु क्या करते हैं, पहले ज्ञान देते हैं शिष्य को। तो जैसे अदिति को, अदिति ने दुख की अवस्था थी जब वो अपने गुरु के पास या अपने पति के पास आई, ऐसे ही भौतिक जगत में जब हम लोग दुखी होते हैं तो हम एक गुरु को ढूंढते हैं, गुरु के पास आते हैं, और गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान चक्षु हमारी आंखों को खोलते हैं ज्ञान से, और फिर भक्ति का मार्ग सिखलाते हैं। सबसे पहली बात ज्ञान देने के बाद, क्योंकि ज्ञान दे दिया कि ये शरीर और आत्मा अलग है, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है, भगवान की भक्ति करो। तो अदिति से उन्होंने कहा कि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और गुरु ये है, सच्चा गुरु वो है जो हमें भगवान की भक्ति में लगाए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कश्यप मुनि सच्चे गुरु हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं। तो इसीलिए गुरु का अगला कार्य होता है भगवान की भक्ति में लगा देना। ज्ञान दे दिया, अब भक्ति में लगा देते हैं, क्रियाओं में, सेवाओं में लगा देते हैं। तो इसीलिए कश्यप मुनि ने कहा भगवान की सेवा करो, सब कुछ प्राप्त होगा। जैसे यहां पर जनार्दन शब्द इस्तेमाल किया, जनार्दन मतलब जो शत्रुओं को मार सकते हैं सभी प्रकार के। तो इसीलिए तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्रों के शत्रुओं को मारा जाए, भगवान से प्रार्थना करो, वही सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर दीति ने प्रश्न किया कि अच्छा भगवान से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्या उनके लिए करना चाहिए। तो अब कश्यप मुनि कहते हैं कि मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी से ही प्रश्न किया था और उन्होंने जो विधि मुझे बताई थी वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब पयोव्रत या भक्ति में दृढ़ता लाने के लिए कुछ व्रतों को, नियमों के पालन को कश्यप मुनि अदिति को बता रहे हैं। तो भक्ति के मार्ग में सेवा में लगाया शिष्य को गुरु ने, और जब सेवा करते करते थोड़ी बहुत सेवा हुई, फिर सेवा करते करते अब जिज्ञासा उसके मन में आई कि मैं कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सकता हूं। तो अब गुरु उन्हें नियमों को बता रहे हैं, भक्ति के नियम या भक्ति के व्रत उनका वर्णन करते हैं। तो कश्यप मुनि अब अदिति से कहते हैं, और क्या कौन से नियम बता रहे हैं, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण। वो कहते हैं जो मैंने ब्रह्मा जी से सुना, अपने मन से कोई नियम नहीं बता रहे हैं, अपने मन से कोई व्रत नहीं बता रहे हैं। मनगढ़ंत किए गए व्रत, मनगढ़ंत की गई भक्ति केवल उत्पात करती है। तो इसीलिए कश्यप मुनि कहते हैं मैंने जो सुना है, तो सच्चा गुरु कौन है? एक जो कृष्ण की ओर ले जाए, और दूसरा वो जो अनुगमन करे पूर्ववर्ती आचार्यों का, मन से भक्ति का मार्ग नहीं दे कि कोई बात नहीं आपके मन में जो आए वो करो, जो खाना है वो खाओ, कोई नियम नहीं, कोई व्रत नहीं, बस मेरे पास आ जाना, जब कुछ आवश्यकता हो मुझे दे देना, मैं जो मंत्र देता हूं जब करो, भगवान मिल जाएंगे। नहीं, ये मनगढ़ंत भक्ति नहीं। तो अब कश्यप मुनि नियमों को बताते हैं। जब अदिति ने पूछा कि मैं कैसे भक्ति कर सकती हूं, तो वो पयोव्रत को कहते हैं जो उन्होंने ब्रह्मा जी से सुना। पय यानी दूध। तो वो कहते हैं कि ये जो व्रत है बहुत शक्तिशाली है। इस अध्याय के अंत में इस व्रत को सर्व यज्ञ कहा गया है। सर्व यज्ञ यानी जितने भी आप यज्ञ कर लो उन सब में ये श्रेष्ठ व्रत है जिसको कहा जा रहा है करने के लिए। तो वो कहते हैं कि ये व्रत है जिसमें 12 दिन तक, एक समय है उस समय में, हर वर्ष नहीं, वर्ष के एक समय में, हर समय नहीं, 12 दिनों तक व्यक्ति को केवल दूध पीकर रहना है। और ये तो केवल कोई सोचेंगे बहुत सरल है, 12 दिन दूध पीना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये कहकर उन्होंने बहुत सारे नियमों को बताया। वो कहने लगे कि अगर हो सके तो कहीं पर अगर भालू के द्वारा खोदी गई मिट्टी मिले उसके खुरों से, उस मिट्टी से स्नान करना है और पृथ्वी देवी का स्मरण करना है। वो पृथ्वी देवी जिन्हें वराहदेव ने उठाया था अपने दंष्ट्रों पर, तो उनकी पूजा करनी है। तो ऐसे अलग अलग वर्णन उन्होंने किए और बहुत सारे कड़क नियमों को बताया। ये कोई सरल नहीं था। उन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, और दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए। आजकल कलयुग में बहुत कठिन है दिन में 3 बार स्नान करना, भक्तों के लिए सरल है लेकिन बाहर वालों के लिए बहुत कठिन होता है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया कि क्या करना चाहिए, और फिर उन्होंने बताया कि भगवान को प्रसाद अर्पण करना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, वैष्णवों को बुलाना चाहिए, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए। ये पूरे नियम उन्होंने इस पयोव्रत के बड़े विस्तार से अदिति को बताया। तो अब ये प्रश्न आता है कि क्या भक्ति में व्रतों का महत्व है या नहीं। ये जो व्रत किए जा रहे हैं कि ये होना चाहिए, ऐसे करना वैसे करना, तो भक्ति में इसका क्या लाभ है। भक्ति तो कहा जाता है कि कृष्ण से प्रेम करने को भक्ति कहते हैं, तो फिर ये व्रत क्यों। जैसे कई व्रत हम लोग लेते हैं, उपवास करते हैं, जन्माष्टमी इत्यादि दिवसों पर हम लोग उपवास करते हैं, या हमने व्रत लिया है कि हम शराब नहीं पिएंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, अवैध संग नहीं करेंगे, और इन व्रतों को हम कड़ाई से पालन करने का प्रयास करते हैं, तो क्या आवश्यकता है ये व्रत की भक्ति में, और हमें कितनी कड़ाई से इसका पालन करना चाहिए। तो व्रत भक्ति में बड़े महत्वपूर्ण है। भक्ति में व्रतों का पालन न करना, ये हमें जो भक्ति का आनंद है, असली आनंद, उससे दूर ले जाती है। उस भक्त के लिए जो भक्ति में किए गए व्रतों को या वचनों को पूरा नहीं कर पाता, भक्ति कृष्ण भावनामृत केवल एक संघर्ष बन जाता है, माया से संघर्ष, है ना। उसके लिए वो आनंद सागर नहीं दिखाई देता भक्ति का, जिसकी हम लोग वर्णन सुनते हैं। हम लोग जब भक्ति में आए थे तो हमें कहा गया था केवल आनंद कंद, भक्ति तो अमृत है, सागर है आनंद का। कहां है वो आनंद, क्यों संघर्ष चल रहा है अभी भी। क्या जप करते हुए श्री कृष्ण का स्मरण आता है, क्या हम भगवान की सेवा करते हुए उस आनंद को लेते हैं। ये सर्वोच्च आनंद कहा गया है, सेवा का आनंद। एक एक स्तर का आनंद है जड़ आनंद, जो जड़ वस्तुओं से प्राप्त किया जाता है, इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। इंद्रियां क्या है, हमारे शरीर क्या है, जड़ वस्तु है। दूसरा आनंद है ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म को प्राप्त करके किया जाता है, व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में चला जाता है, उसमें एक आनंद मिलता है। तीसरा आनंद है प्रेमानंद, भगवान का जब प्रेम प्राप्त होता है वो आनंद है। उससे ऊंचा आनंद कहा गया है सेवा आनंद, जो सेवा का आनंद है। तो कहां आ रहा है वो आनंद, हम तो रोज सेवा कर रहे हैं, आनंद नहीं आता, केवल बस लगा रहता है। कभी कभी तो आनंद क्या ऐसा लगता है, क्यों सेवा करनी पड़ रही है। आए हैं सेवा करने के लिए, मंदिर आते हैं सेवा करने के लिए, समर्पण करते हैं सेवा करने के लिए, ब्रह्मचारी सन्यासी बनते हैं सेवा करने के लिए, लेकिन मन में आता है ये सेवा क्यों करनी पड़ रही। तो कहां गया वो आनंद, कहां है वो भक्ति का आनंद। तो उन भक्तों के लिए जो जीवन में कुछ चीजें का पालन नहीं कर पाते, भक्ति केवल संघर्ष हो जाती है, माया से संघर्ष। और ये ऐसा संघर्ष है कि बहुत दुखी करता है, क्योंकि बाहर भी संघर्ष था भक्ति के बाहर, हम यहां छोड़कर आए कि आनंद मिलेगा, यहां भी संघर्ष है। तो क्या चीजें हैं जो हमारे इस आनंद को संघर्ष में बदल देती हैं। पहली चीज है झूठा विश्वास, हमें अपने ऊपर विश्वास हो जाता है, झूठा होता है। जब हम भक्ति में आते हैं, नए नए आते हैं, तो हमारे अंदर एक झूठा विश्वास आ जाता है कि बस अब मुझे कोई हिला नहीं सकता, अब तो 16 माला करूंगा, कृष्ण को प्राप्त करूंगा, बस हो गया। ये झूठा विश्वास है, क्योंकि विश्वास हमारी भक्ति पर आधारित नहीं है, हमारी शुद्ध चेतना पर आधारित नहीं है, ये विश्वास हमारे अहंकार पर आधारित है। क्योंकि हमें अहंकार था बाहर भी जब हम थे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं इस जगत में, मैं करके दिखाऊंगा, और वही विश्वास हमारे लिए भक्ति में बना रहता है, ये झूठा विश्वास है। हमारा विश्वास होना चाहिए भक्तों की कृपा पर। अहम दरिश्यामि दुरंत पारम, भागवत के 11वें स्कंद में श्लोक आता है जब सन्यासियों के लिए कहा जाता, तो अहम दरिश्यामि दुरंत पारम मतलब क्या है, ये जो जगत है बहुत कठिन है, इसको पार करना, अहम दरिश्यामि, मैं इसको पार कर जाऊंगा। लेकिन ये विश्वास कब आना चाहिए, जब हमें किस पर होना चाहिए विश्वास, भक्तों की कृपा पर। भक्तों की कृपा होगी तो अहम तरिष्यामि, गुरु की कृपा होगी तो अहम तरिष्यामि, अपने बल पर नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया, मुझे कोई अपने बल पर भरोसा नहीं है, आपके चरण कमलों पर भरोसा है, आपके भक्तों पर भरोसा है। तो पहली चीज जो हमारे भक्ति के आनंद को संघर्ष में परिवर्तित कर देती है, झूठा विश्वास। फिर थोड़े समय बाद वो टूटता है विश्वास। जैसे एक बच्चा खिलौना लेकर बड़ा आनंद लेता है और फिर उसका खिलौना टूट जाता है। तो जब ये झूठा विश्वास टूटता है, तब हमारी जो भक्ति की क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, वो विचलित रहती हैं। विचलित मतलब ये दूसरी अवस्था है, पहले तो झूठा विश्वास हो गया, फिर विचलित क्रियाएं। विचलित कैसे रहती हैं? कभी कभी भक्ति में बहुत ध्यान लगता है, कभी ध्यान नहीं लगता है। कभी भक्ति करने का बड़ा उत्साह आता है, कभी बिल्कुल उत्साह नहीं आता। ऐसा लगता है सब छोड़ देना चाहिए, ये सब बेकार की चीजें हैं। कभी भक्ति में ऐसा उत्साह आता है कि लगता है बस इसके आगे कुछ नहीं है, जीवन यही है। कभी जब करते हैं तो आंखों में आंसू आने लगते हैं, कभी जब करते हैं तो सुनाई भी नहीं देता हम क्या बोल रहे हैं। ये विचलित अवस्था, ये दूसरी चीज है जो हमारे भक्ति के जीवन में आती है। तो हम लोग फिर और प्रयास करना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति निश्चय नहीं कर पाता, ये तीसरी अवस्था आती है, इनडिसीजन, निर्णय नहीं ले पाना। पहले तो झूठा विश्वास था, वो टूट गया, अब भक्ति में हमेशा विचलित रहते हैं, तो अब निर्णय लेने की स्थिति आई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कोई ब्रह्मचारी है तो सोचता अच्छा मैं गृहस्थ बन जाऊं, वैसे ही यहां पर कुछ हो नहीं रहा है, ना तो मैं ठीक से भक्ति कर रहा हूं और ना ही भौतिक जगत में हूं, मेरे मन में इतने सारे विचार आ रहे हैं या मेरे मन में गलत विचार आ रहे हैं, तो अच्छा है कि मैं गृहस्थ बन। ये निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति आ जाती कि जहां पर हम लोग या जो गृहस्थ हैं वो सोचते हैं कि क्या जरूरत है, ठीक है दूर रहकर भक्ति करेंगे, ये होगा वो होगा, बिल्कुल नहीं। ये सब माया के प्रभाव है, भक्तों से अलग रहकर भक्ति हो ही नहीं सकती, ये सब माया के प्रभाव है। तो ये इसको कहते तीसरी चीज, जहां निर्णय नहीं ले पाता है व्यक्ति कि क्या करना चाहिए मुझे आगे। और ऐसी अवस्था में गुरु के पास जाकर समर्पण भी नहीं करता है। एक शिष्य के लिए अनिवार्य है कि जब उसके जीवन में दुविधाएं आए, वो निर्णय नहीं ले पाए, तो उसको जाकर गुरु को समर्पण करना चाहिए और फिर जो गुरु कहे वो करना चाहिए। ये विधि बस, क्योंकि अपने मन से जब तक वो निर्णय लेता रहेगा दुविधा में रहेगा, ये करूं या ये करूं, ये करूं ये ठीक होगा नहीं, ये ऐसा करूं ऐसा करूं। भक्त के लिए सरल मार्ग है गुरु को समर्पण करना और फिर जैसा गुरु कहें वैसा करना, निश्चित प्रगति होगी। तो ये निर्णय नहीं ले पाते, ये तीसरी अवस्था है। तो आप देखिए इन सारी अवस्थाओं में आनंद कहां है, जब विचलित हो गई, कभी ठीक हो रहा है कभी नहीं हो रहा, कभी ठीक तो, और अब स्थिति आ गई कि हम निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी अवस्था में चौथी स्थिति आती है जहां इंद्रियों से संघर्ष बढ़ जाता है, व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रख पाता, उसका संघर्ष बढ़ जाता है। थोड़े समय पहले तक शुरुआत की अवस्था में उसको इंद्रियों की चिंता नहीं थी, वो तो सोच रहा था मैं स्वामी हो गया इंद्रियों का, गोस्वामी हो गया, क्योंकि बड़ी अच्छी भक्ति कर रहा हूं और लोग भी गुणगान करने लगते हैं, ये स्वाभाविक है। आप सबने अनुभव किया होगा, आप थोड़ी भक्ति कीजिए, शुरुआत कीजिए, पहले तो लोग कुछ हंसी मजाक करते हैं लेकिन बाद में ये कहने तो बहुत अच्छा कार्य किया, जो मार्ग पर जा रहे हो बढ़िया जा रहे हो, अरे तुमने ब्रह्मचर्य ले लिया बहुत बड़ा काम किया। अन्य लोग आकर गुणगान करने लगते हैं, अन्य भक्त गुणगान करने लगते हैं, हमें लगता है कि हम तो हो गए गोस्वामी, लेकिन संघर्ष अब शुरू होता है इंद्रियों से। एक बार एक सन्यासी किसी ब्रह्मचारी को बता रहे थे कि ब्रह्मचार्य स्वीकार करना ये विवाह की तरह है, जैसे व्यक्ति विवाह करता है बड़े बड़े आशाओं को लेकर, है ना, विवाह के समय बड़ी आशा, एकदम आशा एकदम टॉप पर होती है जीवन की कि सब कुछ हो जाएगा, सब सुखी एकदम, कोई सोचता नहीं है कि थोड़े समय बाद कुछ गड़बड़ हो जाएगी या झगड़े होंगे, इतना कुछ नहीं, बहुत ऊंची आशाएं रहती हैं कि बाकी सारे लोगों के पारिवारिक जीवन में कष्ट है लेकिन मेरा पारिवारिक जीवन कोई कष्ट नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। तो ऐसे ही जब ब्रह्मचर्य लेते हैं तो ये विवाह के समान है। और वो बता रहे थे कि पहले 3-4 साल ये जब विवाह के बाद थोड़े समय के लिए पति पत्नी कहीं घूमने चले जाते हैं तो ये उसकी तरह जिस समय में बहुत सुखी रहते हैं, बड़े बड़े आनंद में रहते हैं वो, फिर बाद में आकर पता चलता है क्या होना है जीवन में। बोलते ही वो 2-3 साल ही उसमें निकल जाते हैं। जैसे हम शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए कह देते, हनीमून पर चले जाते हैं, तो वो समय तो बड़ा अच्छा होता है पति पत्नी के लिए। तो बोलते ये 2-3 साल 4 साल ब्रह्मचारी के लिए वो समय है, बड़ा अच्छा बड़ा आनंद, और फिर संघर्ष शुरू होता है। फिर जब, क्योंकि ये जब पति पत्नी कुछ समय बिता लेते हैं, जीवन 6 महीना साल निकल जाता है, तब जब असली जीवन आता है कष्ट शुरू होते तब पता चलता है कि हाय हाय अच्छा था इस्कॉन में बताया था कि ब्रह्मचारी बनो विवाह नहीं करो, सुना नहीं, अब जीवन भर सहन करना है। तो भक्ति में भी अब ये समय आता है जब हमें इंद्रियों से संघर्ष बढ़ जाता है, हम इंद्रियों को संयम में नहीं रख पाते हैं, और ये कैसे होता है कोई जान नहीं पाता, चाहे वो गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो वानप्रस्थ हो सन्यासी, सबके लिए अवस्था आ सकती है अगर वो सावधान नहीं, खास करके नए भक्तों के लिए आ जाती। कैसे होता है पता नहीं चलता, हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते किसी के प्रति आकर्षण होना शुरू होता है, हमें पता नहीं चलता है, धीरे धीरे हमारी इंद्रियों पर से हमारा संयम चला जाता है और फिर बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये चौथी अवस्था है जहां इंद्रियों के प्रति संघर्ष बहुत बढ़ जाता, इंद्रियों से संघर्ष बढ़ जाता, व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रख पाता, जानते हुए भी। अजामिल की कथा हम लोग सुन चुके हैं, अजामिल ने सारे धर्मशास्त्र पढ़े थे तो धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा है वैद्य संग नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को देखकर आकर्षित नहीं होना चाहिए, लेकिन अजामिल हो गया, और वो भी कैसी स्त्री को जो किसी और पुरुष के साथ आलिंगन कर रही थी, वेश्या थी, चरित्र ठीक नहीं, ऐसी स्त्री को देखकर आकर्षित हो, एक ब्राह्मण अच्छे कुल का ब्राह्मण का पुत्र यज्ञ में लगा हुआ लेकिन ऐसी स्त्री के प्रति आसक्त हो, तो ये उदाहरण है कि संभव। इसीलिए कभी भी किसी भी अवस्था में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कभी कभी हमारे मन में आ जाता है 20 साल हो गया ब्रह्मचारी रहते हुए सैफरन में हूं, कुछ नहीं हो सकता, एक थप्पड़ पड़ता है सब कुछ हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता व्यक्ति कहां गया। तो इसीलिए ये अवस्था चौथी अवस्था जहां इंद्रियों को हम संयम में नहीं रख पाते, और फिर पांचवी अवस्था आती है जहां हम अपने व्रतों को तोड़ने लगते हैं, व्रतों का पालन नहीं कर पाते, हमने व्रत लिए हैं, बहुत से व्रत होते हैं, और फिर जब हमारी ऐसी स्थिति होती है तो एक भक्त क्या करता है, वो और व्रत लेता है, अगर वो थोड़ा भी गंभीर है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो वो और व्रतों को लेता है, 16 माला जब कर रहा है 32 माला शुरू कर देता है कि नहीं अभी मैं 32 माला करूंगा, 3 टाइम खा रहा है वो 1 टाइम खाना शुरू कर देता है, नहीं मैं 1 टाइम ही खाऊंगा, बहुत बड़ी कड़ी तपस्या करूंगा, तो वो व्रतों को ले लेता है बहुत सारे लेकिन उनको बनाए नहीं रख पाता, व्रत बने नहीं रहते। इसीलिए हमें सोच समझ कर व्रत लेने चाहिए, कभी कभी उत्साह में आकर लोग व्रत ले लेते हैं, 32 माला जब करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा वैसे रहूं, जितना संभव है उतना करना चाहिए और जितने व्रत हैं उनको बनाए रखना चाहिए। तो व्रतों का महत्व ये है कि व्रत बनाए रखने से सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो व्रत हैं ये हमें झूठे आनंद से दूर ले जा रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं उन झूठे आनंदों को जो हमें कृष्ण से दूर ले जाते हैं। दो चीजें हैं, एक झूठा आनंद जो कृष्ण से दूर ले जाएगा, दूसरा सच्चा आनंद जो झूठे आनंद से दूर ले जाएगा लेकिन कृष्ण की ओर ले जाएगा। भक्ति में आवश्यकता है व्रतों को बनाए रखें, कड़ाई से व्रतों का पालन करें, क्योंकि जब हम नियमों को तोड़ते हैं, व्रतों को तोड़ते हैं, पाप उत्पन्न होता है। श्रील प्रभुपाद ईशोपनिषद के तात्पर्य में लिखते हैं, जहां पहले श्लोक में वो वर्णन करते हैं भगवान की सत्ता का, कि सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचाम जगताम जगत। वो जब कहते हैं कि ये सब कुछ भगवान का है, तो उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं। वो कहते हैं कि पाप की जड़ क्या है, और प्रभुपाद कहते हैं डेलिबरेट डिसोबीडियंस, जान बूझ कर नियमों को तोड़ना, भगवान की सत्ता को अस्वीकारते हुए, यह सब कुछ भगवान का है इसको अस्वीकारते हुए, यह पाप की जड़ है। तो जब हम नियमों को तोड़ते हैं तो पाप उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए नियमों को भक्ति में बनाए रखना बहुत अनिवार्य है, कड़ाई से नियमों का पालन करना, व्रतों का पालन करना, यह बहुत अनिवार्य है। भले उसके लिए बहुत कष्ट हो, जैसे अदिति को हुआ, कोई साधारण व्रत नहीं था ये पयोव्रत की, ठीक है बस दूध पीकर रह लो तो कोई भी रह लेगा। कितने सारे नियम का, द्वेष नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, आपने ये किया तो व्रत टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं था कि बहुत सरल व्रत था। तो उन्होंने कड़ाई से पालन किया, हालांकि 12 दिन, लेकिन बड़ी कड़ाई से पालन किया। तो जब हम व्रत कड़ाई से पालन करते हैं तो हम उस झूठे धोखे देने वाले आनंद को त्याग रहे हैं जो हमारे बंधन का कारण है। तो इसीलिए पांचवी अवस्था होती है जब हम बनाए नहीं रख पाते हैं व्रतों को, और उसके बाद छठी अवस्था आती है, अंतिम अवस्था, जहां हम क्योंकि व्रतों को नहीं बनाए रख पा रहे, शक्ति नहीं है हमारे अंदर, तो जो भक्ति के सुविधाएं हमें मिलती हैं हम उनमें आनंद लेने लगते हैं। अर्थात भक्ति को हम अपने आनंद का मार्ग बना लेते हैं। बस इन कारणों से हमारी भक्ति में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, हम वो आनंद के सागर को नहीं, उसमें डूब नहीं पाते, वो भक्ति के आनंद को ले नहीं पाते, क्योंकि ये 6 चीजें हमारे जीवन में, भक्ति के जीवन में संघर्ष उत्पन्न कर देती हैं। तो ये जान लीजिए कि भक्ति का अर्थ संघर्ष नहीं है, जैसे बाहर के जगत में लोग कहते हैं जीने का अर्थ संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, क्यों संघर्ष करना है हमें, और भक्ति में भी क्यों संघर्ष करें हम? हमें भक्ति में आनंद के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के संघर्ष से हार जाते हैं। हमें भक्ति में आनंद के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हम भक्ति की सुविधाओं के संघर्ष से हार जाते हैं, हम उनको छोड़ नहीं पाते। हमें भक्ति में संघर्ष करना पड़ता है आनंद के लिए, क्योंकि हम बड़ी अच्छी तरह से आदेशों का पालन नहीं करते। इसीलिए जैसे अदिति ने बड़ी कड़ाई से, अदिति को सब नियम बताए गए, कुछ मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और भगवान की प्रार्थनाएं उन्होंने समझाई, मंत्र बताए जिसमें भगवान का गुणगान था कि आप महान हैं, आप सबके हृदय में हैं, आप सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो मंत्रोच्चारण करना, तपस्या करना, ये सब बताया गया। तो गुरु इस मार्ग को देते हैं, इसको भजन क्रिया कहा जाता है, भक्ति का मार्ग कहा जाता है। तो जब इस मार्ग को कड़ाई से पालन करते हैं, जैसे अदिति ने किया, उस मार्ग को करेंगी अदिति, तो फिर ऐसे व्रत को उन्होंने बताया कि इस व्रत को करो, भगवान प्रसन्न होंगे तुम्हारे इस व्रत से। और इस श्लोक के अंतिम, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में वो बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं इस विधि के बारे में। वो कहते हैं कि ये जो विधि है, अर्थात ये पयोव्रत जो है, अधोक्षज कहलाने वाले दिव्य भगवान को प्रसन्न करने की यह सर्वोत्तम विधि है, यह समस्त विधि विधानों में श्रेष्ठ है, यह सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, दान देने की और यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो आगे वो कहते हैं कि तुम विधि विधानों की दृढ़ता से पालन करते हुए इस अनुष्ठानिक व्रत को संपन्न करो। इस विधि से परम पुरुष तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो ये अंत में उन्होंने समझाया, मतलब वो कह रहे हैं कि दृढ़ता से विधि विधानों का पालन अनिवार्य है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें दृढ़ता से अपने अपने व्रतों को पालन करना चाहिए। जो व्रत हम लोग लेते हैं, जैसे भक्ति में प्रवेश करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो हम लोग व्रत लेते हैं चार नियमों का कड़ाई से पालन करने का, या अन्य भी जो भक्ति के व्रत हैं उनका हमें कड़ाई से पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत हैं ये हमें भगवान की ओर बड़ी तीव्रता से ले जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब आगे के अध्यायों में वर्णन किया जाएगा कि किस प्रकार भगवान अदिति का पुत्र बनने के लिए